आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अन्विता कुमारी और हम पढ़ रहे थे आपकी पुस्तक का पाठ एक, माता का अंचल। ये शिव पूजन सिंह सहाय द्वारा लिखित उपन्यास की एक अंश है, एक कहानी है। और इसमें क्या बताया गया है कि ग्रामीण परिवेश कैसा होता है, हमारे भारत में जो गांव हैं वहाँ की संस्कृति कैसी होती है, रहन सहन कैसा होता है और परिवार की वहाँ पे क्या स्थिति होती है, परिवार के जो लोग होते हैं आपस में उनका कैसा संबंध होता है, ये सब तो लेखक ने बताया ही है। साथ में एक बच्चे के लिए माता की ममता और पिता का प्रेम, इन दोनों के इस प्यार में, दुलार में क्या क्या भावनाएं जुड़ी होती हैं, क्या समानताएं या अंतर होता है, ये सब चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। तो हमने देखा था कि जो कहानी है वो आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है और भोलानाथ नाम का एक बच्चा है, उसके जीवन की घटना इसमें दी गई है कि कैसे वो बच्चा हमेशा अपने पिताजी के साथ ही रहना पसंद करता है, जैसे उनके साथ खेलता है, उनके साथ खाता है, उनके साथ सोता है, सब कुछ, नहाना धोना, पूजा पाठ वगैरह सब वो अपने पिताजी के साथ बैठ के करता है। लेकिन आखिर में जब वो घबरा जाता है, उसे सांप दिखता है, वो भागता है, तो मुसीबत के समय उसे क्या याद आता है, माता का अंचल, यानी अपनी माता की गोद ही उसे याद आती है और उसे वहीं पे जाके शांति मिलती है। तो ये जो माता का प्रेम होता है, माता की अगाध स्नेह की छाया होती है, इसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करता है, यही इस कहानी में दिखाया गया है। क्योंकि कहानी ग्रामीण परिवेश के ऊपर है, इसीलिए भाषा भी ऐसी है कि कई जगह पे देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो हमने कहानी पढ़ ली थी और आज हमें इसके प्रश्नोत्तर करने थे, तो मैं आपको अब इसके प्रश्नों के उत्तर समझाऊंगी ताकि आप उसे अच्छे से समझ सकें, लिख सकें और परीक्षा में भी अच्छे से आपके अंक आएं। पेज नंबर आप 8 पे आ जाइए, ठीक है। तो पेज नंबर 8 पर आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न पढ़ती हूँ मैं। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि बच्चे का जुड़ाव पिता से बहुत था, उनसे स्नेह, उनसे प्यार भी था, लेकिन जो माता की ममता होती है वो आपको मुसीबत के समय सुरक्षित महसूस करवाती है। ठीक है, जो माता की ममता होती है वो आपको मुसीबत के समय सुरक्षित महसूस करवाती है। इसी वजह से जब भोलानाथ पर भी विपदा आई, उसे सांप दिखा, तो वो एक सुकून, शांति पाने के लिए, प्रेम पाने के लिए अपनी माँ की गोद में जाकर बैठ जाता है और माँ के आंचल में वह स्वयं को इतना सुरक्षित महसूस करता है, इतना उसे लगाव महसूस होता है कि वो सारे दुखों को भुला पाने में फिर सफल होता है। ठीक है, आगे आपको समझ में, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? भोलानाथ रो रहा था बच्चा, लेकिन जैसे ही उसके साथी, उसके मित्र उसके आसपास आते हैं तो वो रोना क्यों भूल जाता है? तो इसमें आपको बताना है कि बच्चों का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, पल में रो रहे हैं, पल में हंस रहे हैं, है ना। बच्चों का स्वभाव ऐसा होता है कि वो पल में रो जाते हैं और पल में ही हंसने लगते हैं। तो ऐसा ही भोलानाथ के साथ भी हुआ था। उसकी माँ ने जब जबरदस्ती उसे तेल लगाया तो उसे रोना आने लगता है, लेकिन वहीं जब वो देखता है कि उसके मित्र वहां खड़े हैं, उसके दोस्त, उसके हमउम्र बच्चे वहां खड़े हैं, तो उसे भी उनके साथ खेलने का मन करने लगता है और वो खेलने की लालसा में और मस्ती मजा करते हुए रोना भूल के, सिसकना भूल के या रोना भूल के उन बच्चों के साथ खेलने में मस्त हो जाता है, मग्न हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज आपको मुख्य रूप से याद रखनी है कि बच्चों के स्वभाव के कारण हुआ कि वो कभी भी पल में हंस जाते हैं, पल में रो जाते हैं। छोटी सी बात भी उन्हें दुख पहुंचा सकती है और वही छोटी सी ही बात उन्हें तुरंत खुश भी कर सकती है। तो यही भोलानाथ की भी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार, उसे दोस्तों को देखकर खुशी होती है और वो अपना रोना धोना सब भूल के खेल में मग्न हो जाता है। अगला विचार देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पढ़ती हूँ। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते गाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी कोई तुकबंदी याद हो तो लिखिए। जैसे बच्चे यहाँ पे दिखाए गए हैं ना कि जब भी कुछ खेलते हैं तो तुकबंदी करते हैं, दो चार पंक्तियां गाते हैं, ऐसे ही आपको भी सोच कर लिखना है कि क्या आपको कोई तुकबंदियां, कुछ पंक्तियां याद हैं। अगर आप खुद से लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कुछ मैं आपको याद दिलवा देती हूँ। जैसे जब हम वो खेल खेलते थे ना जिसमें सब बच्चे गोला बनाकर बैठते हैं और पीछे से कोई रुमाल डाल के भागता है और फिर उसके पीछे हमें पकड़ना होता है, उसे कोड़े से मारना होता है, तो उसमें हम क्या तुकबंदी करते थे? घोड़ा जो माल खाई पीछे देखो मार खाई। ठीक है, घोड़ा जो माल चाहिए पीछे देखे मार खाई। ऐसी ही तुकबंदी आप और भी ढूंढकर लिख सकते हैं जो हमने बचपन में खेली हो या फिर गाई हो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न चार पढ़ रही हूं मैं। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? देखिए, क्योंकि ये जो कहानी है, एक तो वो थोड़े पहले, काफी पहले समय की है ना, बहुत पुराने समय की है, दूसरा ग्रामीण परिवेश भी है, तो इसीलिए हो सकता है कि जो खेल है, ये खेल के तरीके हैं, ये खेल की सामग्री, खेल का सामान है, उसमें कुछ अंतर आ गया हो। तो आपको इस आधार पर बताना है कि आपके खेल की सामग्री और उनके खेल की सामग्री में क्या अंतर है। तो आप क्या लिखेंगे कि भोलानाथ और उसके जो मित्र थे वो खेल के लिए क्या करते थे? उनके आसपास जो चीजें उपलब्ध होती थी उन्हीं का प्रयोग वो ज्यादातर करते थे। जैसे कि उनके आसपास कुछ मिट्टी पड़ी है, पत्थर पड़े हैं या फल फल फूल पड़े हैं, कुछ भी छोटी मोटी चीजें जो हमें अपने आसपास ही मिल जाती हैं, लकड़ी, डंडे, पत्थर, मिट्टी, फल फूल, पत्ते, कुछ भी, वही वो उपयोग कर लेते थे। ठीक है, लेकिन आज के जो बच्चे हैं या फिर आप लोग हैं वो क्या करते हैं? उनके लिए क्रिकेट का सामान आएगा ना, जैसे बैट और बल्ला आएगा, गेंद आएगी, फुटबॉल की बॉल आ सकती है, बास्केटबॉल के लिए बॉल आ सकती है, या फिर लड़कियों के लिए डॉक्टर सेट, किचन सेट, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर गेम, आपके पास ये सारी चीजें हैं जो कि भोलानाथ की जो पास सामग्री थी उनसे बिल्कुल ही अलग है। और दूसरी बात, अगर आप ध्यान देंगे तो क्या चीज है, देखिए, क्योंकि वो बच्चे, भोलानाथ और उसके साथ वाले बच्चे, अपने आसपास की चीजों से ही खेल का सामान बना लेते थे, खेल का सामान ढूंढ लेते थे, तो उन्हें वो बहुत ही आसानी से मिल जाती थी, है ना। उन्हें अपने माता पिता को परेशान करने की आवश्यकता नहीं होती थी कि हमें ये लाके दीजिए, ये लाके दीजिए, और ना ही उन्हें किसी प्रकार की चिंता होती थी कि कैसे मिलेगा। लेकिन आज के जो बच्चे हैं उन्हें जिद भी करनी पड़ती है कि ये ला दीजिए, वीडियो गेम ला दीजिए, नया ला दीजिए, साथ ही उन्हें पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं क्योंकि ये सामग्री अधिकतर बाजार से मिलती है, इसीलिए हमारे पैसे भी खर्च होते हैं। जबकि जो भोलानाथ और उसके साथियों का सामान था वो बहुत ही सहजता से बहुत ही आसानी से हमारे आसपास के वातावरण में ही हमें मिल जाता है। ठीक है, तो दो अंतर हमें मिल गए। अब तीसरा देखिए, पांचवा प्रश्न देखिए। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसे प्रसंग आपको इसमें बताने होंगे जो आपके दिल को छू गए हों, आपको बहुत ही अच्छे लगे हों। ठीक है, तो वैसे आप अपने अनुसार लिख सकते हैं कि आपको कौन सा प्रसंग, कौन सी घटना पाठ में सबसे अच्छी लगी, लेकिन मैं जो मुझे अच्छे लगे मैं आपको समझा दे रही हूँ, वही शायद आपको भी या सबको जो भी इस कहानी को पढ़ेगा उसे ये अच्छे लगेंगे। सबसे पहले तो तब की बात है जब भोलानाथ जो है वो अपने पिताजी के साथ बैठ के पूजा के समय उनके साथ बैठा होता है और वहीं पे अपने चेहरे को, अपने तिलक को बार बार आईने में यानी शीशे में निहार रहा होता है ना। और तभी जो उसके पिताजी थे वो भी अपनी पूजा पाठ छोड़कर बच्चे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और बच्चा इससे शर्मा जाता है। तो ये जो बच्चे की जिज्ञासा है अपने चेहरा देखने की, पिता का मुस्कुराना है, फिर बच्चे का शर्माना है, इतना सुंदर तरीके से ये दृश्य वर्णित किया गया है कि किसी के भी दिल को छू सकता है। ठीक है, तो एक ये बहुत ही प्यारा प्रसंग है, इसको आप लिख लेंगे। दूसरा, जब बच्चे तरह तरह के खेल खेल रहे होते हैं और दुल्हन को लेने जाते हैं, क्योंकि वो शादी का खेल खेल रहे होते हैं, दुल्हन को लेके आते हैं, उसके लिए बकायदा डोली तैयार करते हैं। ये भी बच्चों की जो समाज की व्यवस्थाएं हैं, समाज के रीति रिवाज हैं, उनको समझना, उनको निभाना कितना अलग ही एक प्रभाव डालता है पाठक के मन पे। इसीलिए ये प्रसंग भी बहुत सुंदर लगता है कि बच्चे दुल्हन के लिए डोली तैयार करते हैं और जब उनके पिताजी वो दुल्हन का घूंघट उठाते हैं तो बच्चे शर्मा कर भाग जाते हैं। तीसरा प्रसंग अगर आप देखेंगे तो जब बच्चा अपने पिताजी के साथ खेल रहा था, यानी जो भोलानाथ है वो अपने पिताजी के साथ खेलता है और उसके पिताजी जानबूझकर हार जाते हैं ताकि बच्चे को बढ़ावा मिल सके, उसकी शक्ति, उसे अपनी शक्ति पे गर्व हो सके, इसलिए वो प्रसंग भी काफी अच्छा लगता है। तो मैंने आपको तीन प्रसंग बता दिए। इसके अलावा अगर आपको कहानी में कोई प्रसंग अच्छा लिखा लगा हो तो उसे आप अपने अनुसार जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, और लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, इससे आपकी जो सोचने की शक्ति है उसमें बढ़ोतरी होगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं ये लोग कि जैसे गांव के बारे में दिखाया है ना, पाठ में गांव के बारे में बताया है, लेकिन ये काफी पहले की कहानी है, 30 के दशक में, और उस समय से आज के समय में गांव में क्या अंतर आया है यह हमें बताना है। तो आप देख सकते हैं कि उस समय की जो ग्रामीण संस्कृति थी वो आज से भी ज्यादा सहज और सरल थी, है ना, उसमें सरलता ज्यादा थी, मासूमियत ज्यादा थी, लेकिन आज की ग्रामीण संस्कृति में कहीं ना कहीं शहरों की देखा देखी एक दिखावे का भाव बढ़ रहा है, दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसको हमें, इस मुख्य बिंदु को जरूर लिखना है कि पहले की ग्रामीण संस्कृति अधिक सरल और सहज थी, उसमें मासूमियत ज्यादा थी, लेकिन आज नगरों की, शहरों की देखा देखी गाँव में भी ये दिखावे की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ रही है। पहले लोग बहुत सीधे हुआ करते थे, आपस में मेल जोल बहुत था, सारे त्योहारों को लोग मिलकर मनाते थे और जो बच्चे खेल खेलते थे उनमें भी भोलापन था। आसपास की चीजों से ही वो अपने खेल का सामान इकट्ठा कर लेते थे, जैसा उन्हें सिखाया जाता था। समाज में जो चीजें वो देखते थे कि शादी हो रही है, दावत हो रही है, खेत में काम कर रहे हैं किसान, वही सब वो अपने खेलों में भी अपनाते थे। इससे क्या होता था, उन्हें कार्य की समझ भी होती थी और ज्ञान भी मिलता था कि समाज में व्यवहार कैसा करना है, कैसे रहना, ये सारी चीजें भी उनको जानकारी मिल जाती थी। और आज की ग्रामीण संस्कृति में क्या है, लोगों में राजनीति ज्यादा बढ़ गई है। जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर लोग थोड़ा थोड़ा अलग रहने लगे हैं, क्योंकि कहा जाता है आज भी आज के जो गांव है उसमें कहीं ना कहीं शहर घुस गया है। शहर घुस गया है यानी कि जो शहरी संस्कृति है, ये शहरी संस्कृति बहुत ही ज्यादा गांव के लोगों को प्रभावित कर रही है। वो शहर की तरफ इतना आकर्षित हो रहे हैं कि वो अपने गांव की जो मासूमियत होती है, भोलापन, जो सरलता होती है, वो ग्रामीण संस्कृति की नष्ट हो रही है। वो शहर की तरह चकाचौंध का जीवन जीना चाह रहे हैं। और पहले गांव में बिजली, पानी, स्कूल जैसी चीजों की इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, लेकिन आजकल ये सुविधाएं काफी गांव में अच्छे तरीके से उपलब्ध हो रही हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए 7वां प्रश्न। पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। तो अब ये क्या कह रहे हैं, जैसे जब आपने पढ़ा कि भोलानाथ का उसके माँ बाप के साथ क्या रिश्ता था, कितना प्रेम था, तो कहीं ना कहीं आपको भी याद आ रहा होगा कि आप का जो रिश्ता था आपके माता पिता के साथ बचपन में, वो कैसा रहा होगा, कैसे खेल आपने खेले होंगे, कैसे मस्ती की होगी, कैसे डांटा होगा कभी, कैसे प्यार किया होगा, ये सब चीजें आपको भी याद आ रही होंगी। तो आपको एक डायरी बनानी है जिसमें आप ये सारी चीजें लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। जैसे आप अपने बचपन का कोई किस्सा लिख सकते हैं कि एक बार जब मैं छोटा था तो मैंने शैतानी की थी, इस बात पे मुझे पापा ने बहुत डांटा था लेकिन मुझे मम्मी ने बचा लिया था, मम्मी ने बहुत डांटा था लेकिन पापा ने बचा लिया था, बहुत प्यार किया था, एक बार मैं गिर गया था, मेरी चोट लग गई थी तो मैं सीधे अपनी माता के पास जाके उनकी गोद में बैठ गया था, उनसे चिपक गया था, मुझे इतना डर लग रहा था कि माँ के अलावा कहीं और जाने का मन नहीं कर रहा था। ऐसे कुछ किस्से जैसे कि कहानी में आए हैं वैसे आपके जीवन में भी घटित हुए होंगे, तो आपको उसे किसी डायरी या अन्य कॉपी में अपनी याद के तौर पे आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट समझ लीजिए या फिर होमवर्क समझ लीजिए कि आपको कुछ अपने बचपन का किस्सा जो कि आपके माता पिता से, भाई बहनों से संबंधित हो, वो आपको लिखकर लाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर आ जाइए आप लोग, पेज नंबर 9 पर। यहाँ आगे के प्रश्न हैं, तो अब है क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न 8। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। क्या बताना है आपको कि बच्चे का जो माता पिता के साथ वात्सल्य यानी बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है वो व्यक्त हुआ है, उसे आपको अपने शब्दों में समझाना है। तो आप शुरू करेंगे कि जो भोलानाथ है, भोलानाथ का अपने पिता के साथ बहुत ही गहरा संबंध था, बहुत उसे लगाव था, स्नेह था अपने पिताजी के साथ। वो उनके साथ ही सोता था, सुबह उन्हें उन्हीं के साथ उठता था, उसके पिताजी ही उसे जल्दी से नहला देते थे, तैयार कर देते थे, फिर पूजा करने के लिए अपने साथ बिठाते थे, अपने साथ उसे खिलाते थे, फिर उसके साथ खेलते थे, खाना खिलाते थे, घुमाने ले जाते थे। तो पूरा दिन कहीं ना कहीं उसका पिताजी के साथ ही गुजरता था। हाँ, कभी खाना खाने या दूध पीने के लिए अपनी माता के पास वो चला जाता था, लेकिन ज्यादातर समय उसका पिताजी के साथ बीतता था। सुबह से लेकर शाम तक वो अधिकतर समय दिन का अपने पिताजी के साथ ही बिताता था। जबकि माता के साथ उसका रिश्ता कैसा था, जैसे माता होती हैं तो उन्हें पता था कि मेरे बेटे का, भोलानाथ का पेट कैसे भरेगा, तो वो तरह तरह के नाटक रचती थी, उसे कहानियां सुनाती थी, जबरदस्ती फिर खाना खिलाती थी, अपने बेटे के सेहत का ध्यान भी रखती थी, उसकी सुंदरता का ध्यान भी रखती थी, बालों में तेल लगाती थी, कहीं कुछ करती थी कहीं कुछ करती थी। और आखिर में जब उनका बेटा डर से कांपता हुआ आता है, सांप को देख के वो डर गया होता है, रास्ते में चोट भी लग गई होती है, तो अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर माँ जो है वो डर जाती है, रोने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं, और माँ का दिल भी बहुत दुखता है, क्योंकि क्या होता है ना, वैसे एक माँ का दिल बहुत मजबूत होता है, लेकिन जब अपने संतान पर कोई विपत्ति आती है, कोई मुसीबत आती है, तो जो माता होती हैं उनका दिल बहुत जल्दी पिघल जाता है, नाजुक हो जाता है दिल उनका। तो वही उसकी माँ के साथ हुआ, बेटे की ऐसी हालत देखकर उनका दिल जो है वो दिल में एक डर बैठ गया, वो भी रोने लगी चिल्लाने लगी। लेकिन भोलानाथ को जब था इस समय लेकिन भोलानाथ को इस समय अपने पिताजी की याद नहीं आ रही थी, और वो क्या कर रहा था, अपनी माँ की गोद में बैठ गया था। उसे माँ की गोद में एक अलग ही आनंद, एक अलग ही सुकून और शांति मिल रही थी, वो अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहता था उस समय। तो ये क्या होता है, माँ के ममता का प्रभाव होता है कि बच्चा जब किसी मुसीबत में होता है, किसी परेशानी में होता है, तो सिर्फ उसे माँ की गोद ही याद आती है। प्रश्न 9 देखिए। माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो पहले तो आपको ये बताना है कि माता का अंचल, ये जो शीर्षक है कहानी का, ये सही है या नहीं, और अगर आपको कोई नया शीर्षक बताना हो तो आप क्या बताएंगे। ठीक है, तो देखिए कहानी का जो शीर्षक है माता का अंचल, ये उपयुक्त इसीलिए है क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि माता का अंचल, माता की गोद बच्चे के लिए कितनी जरूरी होती है, उसके महत्व को, उसकी सार्थकता को समझाया गया है। बच्चा जो है, कोई भी बच्चा हो या भोलानाथ हो, उसे माता पिता दोनों से ही प्रेम मिलता है, लेकिन उसे मुसीबत के समय जो चीज याद आती है वो होती है माँ की गोद। वहां उसे जितना सुरक्षित महसूस होता है, उतना फिर उसे कहीं भी सुरक्षित नहीं लगता। तो यही चीज भोलानाथ के साथ भी थी, पूरे दिन पिताजी के साथ रहता था, उनके साथ खेलता था, लेकिन जब सांप को देखकर डर जाता है तो अंततः माँ की गोद में छिपकर ही उसे शांति मिलती है, तभी उसे माँ की ममता का एहसास होता है। इसीलिए माता का अंचल, ये जो शीर्षक है, ये पूरी तरह उपयुक्त है। इसके अलावा अगर हम कोई शीर्षक देना चाहें, क्योंकि कहानी माता के प्रेम पर ही निर्भर है, तो आपको माता से जुड़ा कोई शीर्षक ही सुझाना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि इस कहानी के लिए अन्य उपयुक्त शीर्षक हो सकता है माता की ममता, या माँ का प्यार, या माँ की छत्र छाया। ठीक है, इस तरीके से दो तीन शीर्षक आप सुझा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 10 देखिए। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। हमने ये तो पढ़ लिया कि जो माता पिता होते हैं वो क्या क्या करते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे कैसे अपना प्यार दिखाते हैं माता पिता के प्रति, अब हमें ये बताना है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, माता पिता के अचानक से गले लग जाते हैं, है ना, कभी उनको पुचकारने लगते हैं, कभी दिन भर उनके साथ अलग अलग तरह की बातें करते हैं, नाच गाना करते हैं माता पिता के साथ, कभी पिताजी की पीठ पर बैठ जाते हैं, माता की गोद में बैठ जाते हैं, या फिर किसी चीज के लिए जिद दिखाते हैं, है ना, उनके साथ घूमने जाना चाहते हैं, और सबसे जरूरी बात, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को माता पिता के बारे में बताते हैं। इस तरीके से बच्चे जो होते हैं वो अपना प्यार माता पिता के प्रति व्यक्त करते हैं, ये उनके अपने तरीके होते हैं प्रेम व्यक्त करने के। ठीक है, जैसे गले लग जाना, अचानक से पिता के पीठ पे बैठ जाना, माता की गोद में बैठ जाना, उन दोनों को पुचकारने लगना, या फिर अलग अलग तरह की बातें करना, नाच गाना करना, उनके साथ घूमने जाना, किसी चीज की जिद करना कि ये दिलवा दीजिए, और अपने दोस्तों को माता पिता के बारे में बताना, बढ़ चढ़ के बढ़ाई करना कि इसीलिए हम, मेरे माता पिता अच्छे हैं, ये हैं वो हैं, ये सारी चीजें बच्चों के स्नेह व्यक्त करने का, प्यार व्यक्त करने का एक तरीका होता है। अगले प्रश्न देखिए, प्रश्न 11। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह से भिन्न है? यानी यहाँ पे जो बचपन दिखाया गया है भोलानाथ का, कि कैसे उसका बचपन बीतता है, उस हिसाब से आपको अब अपने बचपन से उसकी तुलना करनी है कि आपका बचपन भी क्या ऐसा ही था कि, या उसमें कुछ चीजें अलग हुई थी, ये आपको लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, क्योंकि ये कहानी 30 के दशक की है तो इसमें कुछ ना कुछ हमारे बचपन से चीजें अलग ही हैं, जैसे उस समय बच्चों के पास खेलने के ज्यादा साधन उपलब्ध नहीं थे, ज्यादा सामग्री उपलब्ध नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास तरह तरह के साधन हैं। बच्चों को क्या करना पड़ता था, प्रकृति की जो चीजें, उनके साथ खेलते थे, तितलियों के साथ, चिड़ियों के साथ, पेड़ पौधों के साथ, या फिर मिट्टी के बर्तन, खेत में जाके पानी से फल फूल पत्तियां लेकर, मिट्टी के टुकड़े लेके, घड़े को फोड़कर, मतलब लकड़ी डंडे, कुछ भी जो आपको आसपास चीजें मिलती हैं, प्रकृति से जो चीजें मिलती हैं, बच्चे उन्हीं से खेल खेलते थे। लेकिन आज के जो बच्चे हैं, या आप लोगों का जो बचपन रहा होगा, क्योंकि आप कंप्यूटर युग के बच्चे हैं, तो बचपन से ही आपने टीवी देखी होगी, है ना, कंप्यूटर, फोन, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, ऐसे खेल खेले होंगे ना? तो एक अंतर हो गया खेल के तरीके में। दूसरा अंतर होता है खाने पीने के सामान में। जैसे उस समय के जो बच्चे थे वो क्या खाते थे, जो चीजें घर पर उपलब्ध होती थी, दाल चावल खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, है ना, या फल फूल खा रहे हैं, फूल नहीं फल खा रहे हैं, ऐसी जो चीजें होती हैं वो खाते थे। लेकिन आप क्या खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ऐसी चीजें। तो जो खाने के तरीके में भी उनके और आपके बचपन में भिन्नता थी, एक खेलने के तरीके में और एक खाने के तरीके में। लेकिन जो चीज दोनों में एक जैसी थी वो क्या थी, माता पिता का प्यार। माता पिता का प्यार तब भी वैसा था और आज भी वैसा है, है ना। उस समय भी आपको मतलब उस समय भी माँ बाप बच्चे को वैसा ही प्यार करते थे, और आज भी माँ बाप बच्चे को वैसा ही प्यार करते हैं। और ये जो माँ बाप का प्यार है ये अपने बच्चे के लिए, ये समय के साथ कभी नहीं बदलता है, ठीक है। तो इस चीज, इस तरीके से आप बचपन की तुलना जो है वो कर सकते हैं उस समय के और आज के समय के। अब अगले प्रश्न पे आइए, अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए, क्योंकि ये जो शिव पूजन सहाय जी की एक आंचलिक रचना है, यानी कि जो एक अंचल, एक क्षेत्र के बारे में लिखी गई है, ग्रामीण संस्कृति के बारे में लिखी गई है, इसीलिए आपको फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की भी रचनाओं के बारे में पढ़ना है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, ये मुख्य तौर पर अपनी आंचलिक रचनाओं के लिए ही जाने जाते हैं। इन्होंने ज्यादातर जो कहानियां या उपन्यास लिखी हैं वो किसी विशेष अंचल पर आधारित ही लिखे हैं। तो एक इनकी कहानी है तीसरी कसम, ठीक है, तीसरी कसम उसका नाम है। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको कहीं पढ़ने को मिल जाए, आप तो इंटरनेट पे या फिर लाइब्रेरी में या कहीं कोई किताब मिल जाए तो जरूर पढ़िएगा, तीसरी कसम। और एक उपन्यास है मैला अंचल, ठीक है, इन दोनों को आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पता चलेगा कि इन्होंने अपने तरीके से एक नई संस्कृति या फिर ग्रामीण संस्कृति के बारे में लिखा है। इसी तरीके से जो नागार्जुन रहे हैं, उन्होंने भी कई सारी ऐसी रचनाएं की हैं जो कि गांव को, गांव की संस्कृति को ये दिखाती हैं, है ना। तो मुख्य तौर से ये दोनों ऐसे लेखक रहे हैं जो गांव की संस्कृति पे हमेशा लिखते रहे हैं। मैं आपको फणीश्वर नाथ रेणु को पढ़ने के लिए इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्हें ऐसा लेखक माना जाता है जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति को बहुत ही बखूबी से हमारे सामने रखा है, और अधिकतर उन्होंने ग्रामीण संस्कृति के बारे में ही लिखा है। मैंने आपको एक कहानी बता दी, तीसरी कसम, और एक उपन्यास मैलांचल, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ये पाठ पूरा होता है ना। प्रश्नोत्तर भी हमने देख लिए। तो कहानी में मुख्य रूप से माता की जो गोद है, माता के अंचल में जो सुरक्षा महसूस होती है, जो प्यार और शांति बच्चे को मिलती है, उसी का वर्णन इसमें किया गया था, और साथ में ग्रामीण संस्कृति का रहन-सहन, उनका तरीका, ये सब भी हमने देखा है ना। पाठ पूरा होता है। अब हम मिलेंगे अगले ऑडियो में अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।